मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। AFEIS के आज 26 सितंबर 2019 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज डेली ऑडियो के मुख्य विषय के अंतर्गत हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ बातें करेंगे, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी बातों को देख लेते हैं। मेरे पास इस बीच में दोस्तों काफ़ी मेल आ रहे हैं और वो मेल इससे संबंधित है कि आपको मालूम है कि जो हिंदी में अनुवाद होता है अंग्रेजी के सिविल सर्विस के पेपर का, उसको लेकर के हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ी थी। UPSC को भी आप सब ने मेरे अनुरोध पर बहुत सारे पत्र भेजे थे और यहां तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय को भी आप लोगों ने पत्र भेजे। प्रधानमंत्री कार्यालय से जो कुछ मित्रों को जो पत्र मिले हैं वो बहुत ज्यादा निराश करने वाले हैं, क्योंकि एक तरह से कह लीजिए कि उसमें रिजेक्ट सा कर दिया गया है आप सबकी बातों को और ये कह दिया गया है कि आपके अपने विचार हो सकते हैं, अपनी सोच हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अनुवाद जो है एक्सपर्ट के द्वारा कराया जाता है। खैर, ये प्रधानमंत्री के कार्यालय से आया हुआ उत्तर है। ब्यूरोक्रेसी में जनरली यही होता है, वो किसी अफसर के पास गया होगा, उन्होंने सोचा होगा कि अरे सब चीजें तो होती रहती है, तो उन्होंने अपना उत्तर दिलवा दिया। खैर, वो एक अलग बात है। यूपीएससी से मुझे नहीं लगता है कि किसी के पास अभी तक कोई उत्तर आया है, अदरवाइज आप लोगों में से जरूर किसी ने मुझे सूचित कर दिया होता। लेकिन मित्रों, उससे आप सबको निराश होने की जरूरत नहीं है। चाहे प्रधानमंत्री कार्यालय से उत्तर आ गया हो तो भी, और यूपीएससी से उत्तर नहीं आया हो तो भी, देखिए आपने अपनी बात उन तक पहुंचा दी है। और चलिए, प्रधानमंत्री कार्यालय में तो देखिए और भी बहुत से जरूरी काम होते रहते हैं, तो हो सकता है कि इसे इतनी तरजीह न दी गई हो, लेकिन यूपीएससी का तो मुख्य काम यही है। तो मेरा पूरा विश्वास है कि डेफिनेटली यूपीएससी इस पर कुछ न कुछ विचार कर रही होगी। अगर नहीं कर रही होगी तो कोई बात नहीं, आपसे मेरा फिर अनुरोध है कि ये मत समझिए कि आपका दायित्व खत्म हो गया है, बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। आप लोग जो पहले लेटर भेज चुके हैं वो फिर से भेजने के लिए बिल्कुल तैयार रहें और फिर से भेजें, और जिन्होंने अभी तक नहीं भेजे हैं वे भी अपने पत्र फिर से भेज सकते हैं। होता क्या है कि इसी से इनफैक्ट किसी भी संस्थान पर, स्पेशली अगर वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, तो दबाव बनता है, धीरे धीरे दबाव बनता है, चीज़ों को बदलने में थोड़ा सा वक्त लगता है। लेकिन मुझे विश्वास है कि चूंकि आपकी हमारी जो मांग है वो बहुत ही जेन्यून है, बहुत ही तर्कपूर्ण है, बहुत ही व्यावहारिक है, तो देर सवेर ये मान करके चलिए कि आपकी जीत होगी ही होगी। और इस बीच में एक और संस्थान है जो लोक शिक्षण संस्थान कुछ इस तरह का नाम है, उन्होंने भी, कल मैं एक न्यूज़ देख रहा था गूगल पर, तो उन्होंने भी यूपीएससी से रिक्वेस्ट की है कि आप ऐसा कीजिए कि जो पेपर बनता है वो हिंदी में बनाइए और फिर उसका इंग्लिश में अनुवाद कीजिए। और उन्होंने भी इस समस्या को उठाया है कि कैसे जो अनुवाद की भाषा है वो वास्तव में हिंदी के अनुकूल नहीं है, और इसकी वजह से जो हिंदी के स्टूडेंट हैं और जो दूसरे हमारे क्षेत्रीय भाषाओं के स्टूडेंट हैं उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो देखिए, वहाँ से भी दबाव जा रहा है, वहाँ से भी एक तरह से रिक्वेस्ट जा रही है, आप सब भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उससे एक वातावरण बनता है, वो देर सवेर डेफिनेटली मान करके चलिए कि हमें सफलता मिलेगी ही। मित्रों, इसी के साथ ही मैं एक बात आप सबसे और करना चाहूँगा। देखिए, जो अनुवाद की समस्या है इसे हम कह सकते हैं एक सुधारात्मक कदम है, सुधार परक कदम है कि हम भाषा के स्तर पर कुछ सुधार चाहते हैं, लेकिन हमें अपने लेवल पर सुदृढ़ परक भी कुछ न कुछ कदम उठाने होंगे। मतलब हम अपने आप को मजबूत बनाएं ज्ञान के स्तर पर, भाषा की, हमारी अपनी भाषा के स्तर पर, जो भी दूसरी चीज़ें हैं, पर्सनालिटी के लेवल पर, देश दुनिया की जानकारी के लेवल पर भी हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा, स्ट्रेंदन करना होगा, तभी जाकर के बात बनेगी। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि अगर अनुवाद अच्छा हो गया, हिंदी के जैसा हो गया, तो उससे ही बहुत ज़्यादा थोड़ा फर्क तो पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जिस लेवल पर हैं उसी लेवल पर ही हम दूसरे भाषा यानी कि अंग्रेजी वालों का मुकाबला कर लेंगे। यहाँ मुकाबला करने की बात भी नहीं है, कोई लड़ाई थोड़ी है। ठीक है, वो अपनी भाषा में दे रहे हैं जो उनका मीडियम है, जिसमें उन्होंने पढ़ाई की है, और आपको अपनी भाषा में देनी है जिसमें आपने पढ़ाई की है, तो यहाँ कोई द्वंद युद्ध नहीं हो रहा है। लेकिन यह है कि चूंकि कॉम्पिटिशन है तो थोड़ी सी इस तरह की बातें होती भी हैं कि कौन आगे निकलता है। तो दोस्तों, यहाँ मैं एक सूचना आपको देना चाहूँगा सुदृढ़ीकरण की दिशा में। मित्रों, बहुत लंबे समय से मैं इस काम में लगा हुआ था, और कल अगर आपने YouTube पर देखा हो तो YouTube पर मेरा एक छोटा सा प्रोग्राम उसमें अवेलेबल कराया गया है कि AFEIS ने पूरे के पूरे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के सिलेबस पर ऑनलाइन कोर्स जारी कर दिया है। उसमें केवल जो आपके कंपलसरी पेपर हैं वे नहीं है, बाकी पूरा कोर्स उसमें कवर किया जा रहा है। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि इसमें जितनी मेहनत की गई है, जिस तरीके से इस पर काम हुआ है दोस्तों, मुझे लगता है कि हिंदी और जो दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं के स्टूडेंट की मांग होती थी कि उन्हें बहुत स्तरीय चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, उनकी यह मांग डेफिनेटली ये जो ऑनलाइन कोर्स है वो पूरा करेगी, यह मेरा पूरा विश्वास है। और बाकी फिर जब आप लोग इसमें इनरोल कराएंगे, जाएंगे, देखेंगे, समझेंगे, बातचीत करेंगे, तो हो सकता है कि ऐसा ही महसूस करें। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये जो ऑनलाइन कोर्स है वो डेफिनेटली हिंदी भाषी और जो दूसरे हमारे रीजनल लैंग्वेज के जो साथी हैं उनको स्ट्रेंथन करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, ये मेरा विश्वास है। और सच पूछे तो ये मूल उद्देश्य भी है। मैं दूसरे क्षेत्रीय भाषाओं की बात इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, दूसरी भाषा में मान लीजिए कि कोई उड़िया भाषी है, कोई बंगला भाषी है, कोई मराठी भाषी है, तो देखिए जो पेपर आते हैं वो दो ही लैंग्वेज में है, हिंदी में या इंग्लिश में, यानी कि उन्हें या तो इंग्लिश आनी चाहिए या हिंदी आनी चाहिए। अगर इंग्लिश आती तो इंग्लिश मीडियम के होते, मराठी ले रहे इसका मतलब है इंग्लिश उतनी नहीं आती है, तो जो पेपर पढ़ेंगे वो हिंदी में ही होगी, यानी कि इतनी हिंदी उन्हें आती है कि वो समझ सकते हैं, इतनी हिंदी आती तभी वो पेपर समझ पाएंगे। तो अगर आपको इतनी हिंदी आती है कि आप समझ लेते हैं, तो मान करके चलिए कि जो ऑनलाइन कोर्स है इसे भी आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे और इसका भरपूर लाभ आप उठा सकेंगे। तो दोस्तों, एक जो खबर है आज वो ये है कि कल के न्यूज़ में आपने सुना होगा कि भारत सरकार ने एक सरदार पटेल जी के नाम पर, जो हमारे पहले प्रथम गृह मंत्री रहे हैं, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की शुरुआत की है। और ये जो दिया जाएगा राष्ट्रीय एकता के लिए काम करने वाले व्यक्ति को, राष्ट्रीय अखंडता के लिए काम करने वाले व्यक्ति को, या फिर उसका कोई बहुत ही प्रेरणादायी इंस्पिरेशनल कंट्रीब्यूशन रहा हो, ऐसे व्यक्ति को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है। सरदार पटेल जी के नाम पर होगा, ये एक छोटी सी खबर है। मित्रों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। और आज का जो हमारा मुख्य विषय है वह है भारतीय अर्थव्यवस्था। दरअसल इस विषय को मैंने इसलिए चुना है कि अर्थव्यवस्था पर अभी आप बहुत सी बातें पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। आप देखें कि अमेरिका में भी हमारे जो प्रधानमंत्री जी गए हैं तो वो लगातार उनका जो सबसे ज्यादा जोर है वो दो तीन बातों पर है। एक तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे बहुत तेजी से बढ़ रही है और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं, उसकी जानकारी दी जा रही है। आतंकवाद के विरोध में हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक तरह से यूं कह लीजिए कि विश्व स्तर पर ही एक अभियान सा छेड़ दिया है, इसके बारे में आपको सुनने को मिलेगा। जलवायु परिवर्तन के बारे में भी भारत एक तरह से लीड रोल में है, लगातार भारत इस बात को उठा रहा है। और फिर भारत ने जो दूसरे अभियान छेड़े जिनमें सफलता मिले, स्वच्छता अभियान, जल मिशन, इसके बारे में बातें की जा रही हैं। मित्रों, इसमें जो आर्थिक व्यवस्था वाली जो बात है फिलहाल सबसे इम्पॉर्टेंट है। और कल की टीवी में आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब एक फोरम में बात कर रहे थे तो लगातार अर्थव्यवस्था के बारे में बातें हो रही थी और जो एक्सपर्ट भी आए थे वो भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अपनी अपनी राय दे रहे थे। मुझे यकीन है कि डेफिनेटली आप लोगों ने वह प्रोग्राम सुना होगा। आज के दैनिक भास्कर में चेतन भगत जी का एक लेख है और इसे मैं एक अच्छा लेख मानता हूं, जिसका शीर्षक है ये 6 कदम दे सकते हैं 10% वृद्धि दर। भारत ने जो 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की बात कही है तो उसके लिए अब जरूरी है कि हमारी जो अभी जीडीपी की ग्रोथ है वो अभी से डबल हो, अभी 5% है जो बढ़कर 10% होनी चाहिए। तो ये कैसे होगी, इसके लिए इन्होंने 6 उपाय बताए हैं। मित्रों, इन उपायों पर बात करने का समय मेरे पास अभी नहीं है क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं, मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन मैं ये सजेस्ट जरूर करूंगा कि जो इन्होंने 6 उपाय बताए हैं, पहला उन्होंने रियल एस्टेट को लिया है, दूसरा उन्होंने कृषि को लिया है, तीसरा उन्होंने विनिवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट को लिया है, चौथा उन्होंने कस्टम को लिया है, पांचवा उन्होंने फाइनेंशियल रिफॉर्म को लिया है और छठवा उन्होंने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन बिल को लिया। ये 6 पिलर्स बताए हैं कि इस अगर इन पर काम किया जाए तो हम 10% की वृद्धि दर को प्राप्त कर लेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो 6 पॉइंट जो इन्होंने दिए हैं, आपको चाहिए कि इन 6 पॉइंट को आप समझने की कोशिश करें कि इन्होंने थोड़ी बातें तो डिस्क्राइब की हैं लेकिन आप देखिए कि इनकी बातों को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। और जहां आप नहीं समझ पा रहे हैं या थोड़े से अटक रहे हैं उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, चाहे खुद कोशिश कीजिए, चाहे गूगल महोदय का सहारा लीजिए, चाहे अपने फ्रेंड से बात कीजिए, टीचर से बात कीजिए, लेकिन समझिए। इसी के साथ ही दैनिक भास्कर में ही आज ही के दिन एक और आर्टिकल छपा है, ये एन के सिंह जी का है, बहुत अच्छे, बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं ये, मैंने भी, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। ये भास्कर के चीफ एडिटर भी रहे हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इनका जो शीर्षक है लेख का वो है विकास का संकट समझें फिर योजनाओं की आलोचना करें। इसमें इन्होंने जो कृषि क्षेत्र है हमारा, कृषि क्षेत्र के साथ साथ जो उसके जो सहायक क्षेत्र हैं जैसे दुग्ध पालन है, पशुपालन कह लीजिए, दुग्ध से जुड़ी हुई बातें हैं, और ठीक इसी तरह से जो दूसरी चीजें होती हैं जो खेतीबाड़ी वाले करते रहते हैं उन पर बहुत जोर दिया है, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा है कि कृषि क्षेत्र की हमारी क्या समस्याएं हैं, पशुपालन के क्षेत्र में हमें और क्या क्या करना चाहिए, मत्स्य पालन का भी इसमें उन्होंने उल्लेख किया है। तो आप इन दोनों को एक दूसरे से जोड़कर देख सकते हैं, और मैं सजेस्ट करूंगा मित्रों कि इसे आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और इसे अगर आप मत सोचिए कि आज ही इसे निपटाना है, इसकी कॉपी अपने पास रख लीजिए, आप कल इसे पढ़िए, परसों पढ़िए, जो चीजें रह जाती हैं उन्हें भी समझने की कोशिश कीजिए। देखिए एग्जाम अभी मेंस के हुए हैं, उनके पेपर आपके पास होने चाहिए, मुझे नहीं मालूम कि आपके पास हैं या नहीं, पहले ही आप सबको मैंने सतर्क कर दिया था कि आपके पास होने चाहिए। इस साल के जो पेपर हैं वो थोड़े से डिफरेंट किस्म के हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि जो अर्थव्यवस्था पर एक क्वेश्चन पूछा गया है वो कितना जनरल किस्म का क्वेश्चन है, बहुत ही सामान्य किस्म का है, लेकिन जो सामान्य किस्म के होते हैं वही आपसे कहीं ना कहीं असाधारण ज्ञान की मांग करते हैं, क्योंकि उसमें जो कुछ भी लिखना होता है आपको अपनी तरफ से लिखना होता है। ये क्वेश्चन है, देखिए, क्या आप इस मत से सहमत हैं कि सकल घरेलू उत्पाद GDP की स्थायी समृद्धि तथा निम्न मुद्रा स्फीति के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है? अपने तर्कों के समर्थन में कारण दीजिए। डू यू एग्री विद द व्यू दैट स्टडी GDP ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन हैव लेफ्ट द इंडियन इकोनॉमी इन गुड शेप? गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आर्गुमेंट्स। 150 शब्दों में लिखना है, 10 नंबर है। तो मैंने खासकर ये क्वेश्चन आपको पढ़कर इसलिए सुनाया ताकि आपको क्वेश्चन की प्रकृति थोड़ी सी पता लग जाए। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें मुख्य विषय के बारे में। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। दो मित्रों का मैं स्वागत करता हूँ जिन्होंने एकेडमी की 10 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस में दाखिले लिए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं राहुल राज, आप दिल्ली से हैं, और राज गौरव पूर्णिया बिहार से। दोस्तों इसी के साथ ही मैं स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ ईमेल लिखने वाले मित्रों का, और इस बात के लिए आमंत्रित करता हूँ, स्वागत करता हूँ जो कल मेल लिखेंगे उनका भी। और इन्हीं में से दो मित्रों के नाम हैं सोनू कुमार केशरी, सत्य पी उपाध्याय, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त भी करता हूँ। नमस्कार।